हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। लाइट चलते ही उसके सामने जो चेहरा था, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि अबीर सिंह राठौर बैठा हुआ था। अबीर सिंह राठौर को देखकर ज़ोया का चेहरा खिल उठा और उसने जल्दी से अबीर सिंह राठौर को गले से लगा लिया। वहीं अरमान ठाकुर, जो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, अबीर सिंह राठौर को देखकर आग बबूला हो गया। ज़ोया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे वो इतने दिल से याद कर रही थी, वो इस वक्त उसके सामने, उसकी आंखों के सामने मौजूद था। अबीर सिंह राठौर को देखकर ज़ोया के दिल में तितलियां उड़ने लगीं और वो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। उसने उसे बहुत जोर से गले लगा रखा था। ज़ोया को इस तरह से अपने करीब देखकर अब अबीर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने देखते ही देखते अपने हाथ ज़ोया की कमर पर रख दिए और देखते ही देखते अपने होंठ उसके होंठों पर रखकर उसे चूमने लगा। देखते ही देखते ज़ोया भी अबीर सिंह राठौर का साथ देने लगी और वे दोनों एक दूसरे को दिल खोलकर प्यार करने लगे। अबीर ने एक चादर से दोनों को ढक लिया और चादर के अंदर ही वे दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। लेकिन उनकी मदहोश टेरी आवाज़ें पूरे कमरे में गूंजने लगीं, जो कि पर्दे के पीछे छिपे अरमान ठाकुर के कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थीं। जैसे ही अरमान ठाकुर के कानों में इस तरह की आवाज़ें पड़ीं, उसका गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसका दिल कर रहा था कि वो अपनी बंदूक निकालकर अभी अभी अबीर सिंह राठौर का खून कर दे, जिसने उसकी ज़ोया को उसकी आंखों के सामने छूने की हिम्मत की थी। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने इस तरह की हरकत की तो ज़ोया उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगी, क्योंकि ज़ोया का रवैया पूरी तरह बदल चुका था। अबीर सिंह राठौर और ज़ोया के बीच कम से कम डेढ़ घंटे तक ये प्यार का खेल चलता रहा और फिर वे दोनों एक दूसरे की बाहों में गहरी नींद सो गए। वहीं अरमान ठाकुर उन दोनों के सोने के बाद पर्दे के पीछे से बाहर आया और ज़ोया को इस तरह बिना कपड़ों के अबीर के साथ सोते हुए देखकर उसकी आत्मा जल उठी। वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने अपनी बंदूक निकालकर अबीर सिंह राठौर की ओर बढ़ने लगा। जल्दी ही उसने अपनी बंदूक अबीर के माथे से सटा दी। जैसे ही उसने बंदूक चलाने के लिए अपना अंगूठा ट्रिगर पर रखा, ज़ोया ने एक झटके से उसकी बंदूक उसके हाथ से छीन ली और खुद को चादर में लपेटते हुए बैठ गई। ज़ोया भले ही गहरी नींद में थी, लेकिन वो इतनी शार्प और चालाक हो चुकी थी कि उसे एहसास हो गया था कि कोई उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने उसका चेहरा नहीं देखा था। हल्का सा एहसास होते ही उसने अरमान के हाथों से बंदूक छीन ली और उसी की ओर घुमा दी। क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे, तो सबसे पहले उसने खुद को चादर में अच्छी तरह से लपेट लिया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि अरमान ठाकुर को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। वो तो बस आंखें फाड़कर ज़ोया की ओर देखने लगा। अरमान ठाकुर को लगने लगा कि शायद आज उसका आखिरी दिन आ गया है, क्योंकि ज़ोया बहुत गुस्से से अरमान ठाकुर की ओर देख रही थी। तब तक अबीर सिंह राठौर भी उठ गया था। ज़ोया को बैठा देखकर, उसके हाथों में बंदूक देखकर और जैसे ही उसकी निगाह अरमान ठाकुर पर पड़ी, अबीर सिंह राठौर की आंखों में आग लग गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तब अबीर ने ज़ोया के हाथ से बंदूक ले ली और कहा, तुम वॉशरूम में जाओ और कपड़े पहन कर आओ। अबीर की बात सुनकर ज़ोया खुद को अच्छी तरह से लपेटते हुए वॉशरूम में घुस गई। अबीर सिंह ने तब तक बंदूक का निशाना अरमान की ओर ही रखा हुआ था। जल्दी ही ज़ोया कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर आ गई और अरमान ठाकुर के ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई। तब अरमान ज़ोया की ओर देखते हुए बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी ज़ोया। तुम्हें इस तरह से इस आदमी के साथ मेरी आंखों के सामने रात नहीं गुजारनी चाहिए थी। क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी सांसों पर अगर किसी का हक है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरमान ठाकुर का है। और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरी ही आंखों के सामने किसी और के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने लगी। अरमान ठाकुर अभी भी खुद को ज़ोया का मालिक समझ रहा था। उसे लग रहा था कि ज़ोया उसकी गुलाम है और वो उसका मालिक है। ज़ोया वैसा ही करेगी जैसा वो चाहेगा। लेकिन उसे इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था कि जिस ज़ोया को वो बहुत पहले से जानता था, जिस ज़ोया को उसने जबरदस्ती अपना बनाया था, वो अब बदल चुकी है। उसने उस पुरानी ज़ोया को बहुत पीछे छोड़ दिया है। ये ज़ोया जो उसके सामने खड़ी है, इसके अंदर तो इमोशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसके अंदर अब किसी भी तरह का कोई रहम नहीं है। तब ज़ोया ने अरमान ठाकुर की ओर देखते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, वो तो मिस्टर ठाकुर, आप हमारे कमरे में चोरी छिपे घुस आए और मियाँ बीवी के बीच हुए प्यार को भी देख लिया। ऐसा कहकर ज़ोया ताली बजाकर मुस्कुराने लगी और बोली, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा। वैसे अगर आप यहाँ आ ही गए हैं तो आप हमारी मेहमान हैं और मैं मेहमानों को बिना खातिरदारी के नहीं जाने देती हूँ। ऐसा कहकर जोया ने तीन बार अपनी हथेलियां बजाई। हथेलियां बजते ही 8-10 गार्ड बंदूकों समेत कमरे में हाजिर हो गए। हालांकि ये रात का समय था, लेकिन जोया के सिक्योरिटी गार्ड इतनी शार्प थे कि जोया की तीन हथेलियां सुनते ही तुरंत उसके कमरे में हाजिर हो चुके थे। सबसे पहले अबीर सिंह राठौर ने उन गार्ड की ओर गुस्से से कहा, तुम लोगों की इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच ही अरमान ठाकुर इस कमरे तक आ गया, तुम्हें क्या पता नहीं चला? तब वे गार्ड आपस में एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अरमान ठाकुर आखिरकार किस तरह से उन्हें चकमा देने में कामयाब हो गया था, लेकिन वे ये बात अच्छी तरह जानते थे कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि जिस वक्त सिक्योरिटी गार्ड जोया के साथ नीचे खाना खाने गए हुए थे, उस वक्त वेटर का वेश बनाकर अरमान ठाकुर उसके कमरे में आया था। तब जोया ने अबीर सिंह राठौर को चुप करते हुए कहा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं इस मामले को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लूंगी। मेरी जान, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो करो, डोंट वरी, मैं तुम्हारे मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा। अबीर सिंह राठौर ने जोया को अरमान के सामने ये कहा। अरमान उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। तभी जोया ने अपने गार्डों को ऑर्डर दिया, इस मेहमान को ले जाओ और जमकर इसकी खातिरदारी करो।